ओम शांति। इसमें शांति ग्रुप से कोई बैठा है? शांति, कल आप लोगों ने आर्ट गैलरी देखा, वहां पर पांच स्वरूपों का अभ्यास किया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, प्रैक्टिकल उन युगों में जा करके, तो एक नवीन अनुभव रहा होगा। तो यही जा करके जब आप अपने घर में जाएंगे तो वहां बैठ करके ऐसा सीन बनाना और योग करना। योग के विषय में एक चीज बहुत अच्छी हमारी समझ होनी चाहिए हमारे अंदर, हम ना विजन्स क्रिएट करें, विजुअलाइजेशन से योग करेंगे ना तो अच्छा रहता है, उसमें अच्छी अनुभूति होती है। तो ये पांच स्वरूपों का जो आपको कराया गया, लक्ष्य यही था कि आप ऐसा जब वापस जाए तो ऐसे ही करें। और भी जो तरह तरह के योग गाइडेड मेडिटेशन आपको कराए जा रहे हैं, कल मैं समझता हूँ चार धाम की यात्रा भी कराया होगा, अच्छा रहा वो भी, घर बैठ करके ये चार धाम की यात्रा बिना पैसे का, बिना समय खर्च किए रोज करना। आप लोग, बाबा कहते हैं मुरलियों में, ये बाबा के साकार महावाक्य है कि यदि कभी तुम्हारा मन उदास हो जाए, मन ना लगे, योग करने का भी मन ना करे, तो मन से कहाँ आ जाओ, मधुबन में पहुंच जाओ। मधुबन में मन से पहुंचना ये भी एक योग है। तो शांति ग्रुप कल गया था, आज शक्ति ग्रुप गया है, तीसरा पवित्रता ग्रुप, हाथ उठाओ। ठीक है, तो अभी कल हमने वर्कशॉप कराया था, अच्छा लगा था आप लोगों को? कोई है उसमें से वर्कशॉप जिसने किया था कल? बस पांच छह लोग, बाकी कहाँ चले गए? कल जिन्होंने वर्कशॉप किया था हाथ खड़ा करें, अभी भी मिसिंग है कुछ लोग इसमें से। ठीक है, क्या विषय था कल के वर्कशॉप का? संस्कार परिवर्तन। आज एक दूसरे विषय पर वर्कशॉप करेंगे। आज का जो विषय है वो है लीकेजेस इन ब्राह्मण लाइफ, ब्राह्मण जीवन में लीकेजेस कहाँ कहाँ पे लीकेजेस हैं, ये आम रूप से देखने को मिलता है अपने ईश्वरीय परिवार में। बहुत सारे भाई बहने ऐसे होते हैं जो लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, इनफैक्ट हम सब भी उसमें शामिल हैं। लंबा समय से ज्ञान में चलने के बाद भी जो परिवर्तन हमारे अंदर होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बाद में ज्ञान में आते हैं और बहुत जल्दी आगे पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा है, ऐसे भी हैं जो लंबे समय से ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, योग भी करते हैं, ज्ञानी भी अच्छे हैं, सेवाएं भी खूब करते हैं, फिर भी उनकी स्व उन्नति नहीं हो रही है, आत्म परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है, क्या कारण है? कि एक तरफ अपनी तपस्या से हम अपने आत्मबल को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उस तपस्या के बल को कहीं न कहीं नष्ट कर रहे हैं। जैसे एक मिट्टी का मटका ले लीजिए और एक नलके के नीचे उसे रख दीजिए और उसके नलके को चालू कर दीजिए, पानी भरता जाएगा, लेकिन उसके नीचे तले में आजू बाजू में दो चार पांच दस छोटे छोटे छेद कर दीजिए, क्या होगा? एक तरफ से पानी भर रहा है और दूसरी तरफ से रिजल्ट क्या होता है? लंबे समय का पुरुषार्थ, बहुत अधिक पुरुषार्थ, लेकिन प्राप्ति कम। कुछ नहीं तो नहीं कह सकते, क्योंकि छोटा जो छेद है ना, जो लीक हो रहा है उसका छेद छोटा है, जो पानी आ रहा है वो मोटी धार है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम अपने पुरुषार्थ से, तपस्या से, सेवाओं से, दुआओं से बहुत अधिक आत्मबल, तपस्या का बल जमा करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, अनेक बातें हैं जो हमारे उस आत्मबल को धीरे धीरे नष्ट कर रही हैं। वो कौन कौन से छिद्र हैं, वो लीकेजेस कौन कौन से हैं, उन पर आज चर्चा करनी है। ठीक है, करेंगे। विषय क्लियर है? विषय क्लियर है? हाँ, ब्राह्मीण जीवन में हम अपनी शक्तियों को कहाँ कहाँ नष्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ लीक कर रहे हैं, उन पॉइंट्स पर एक एक करके आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो अभी हम ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले भाई सारे आगे आ जाएं, बहनें माताएं बैठी रहेंगी, सारे भाई आगे आ जाएं। कल की तरह ही यहाँ स्टेज पर आप ग्रुप बनाएंगे। चिंतन कुछ चला मन में, कुछ विचार चले, मक्खन निकला, कितना मक्खन निकला वो तो अभी सुनेंगे। अब से पहले कभी ऐसा सोचा था कि लीकेज भी होता है? हम लोग सुनते हैं क्लासेस में, बड़ों के क्लासेस में बाबा भी कहते हैं, लेकिन एक टॉपिक के अंतर्गत बंध करके सोचना, ये हमारे मन में कम ख्याल आता है ना, तो इसलिए ये ज्ञान का चिंतन बहुत जरूरी है। ज्ञान एक सिस्टम में अरेंज हो जाए हमारे मन बुद्धि के अंदर, ताकि जब हम उसे किसी को सुनाने के लिए जाएं, तो कम शब्दों में, कम समय में बहुत कुछ दे पाएं, एक सिस्टमैटिक रूप में हम दे पाएं, दूसरों को सेवा कर पाएं। तो ज्ञान जितना सुलझा हुआ होगा हमारे अंदर, उतना ही अच्छी तरह से इसे हम डिलीवर कर पाएंगे। और ज्ञान सुलझता है केवल चिंतन से, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप कितना भी योग कर लें, आत्मबल आपका बढ़ जाएगा, पर अगर ज्ञान की बात आए, अगर वाचा सेवा करनी है, तो चिंतन के सिवाय हमारे पास दूसरा मार्ग नहीं है। तो ज्ञान सुलझता है दूसरों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी अपने जीवन में परिवर्तन तभी ला पाते हैं जब ज्ञान को ठीक ठीक समझ पाते हैं। नहीं समझ पाएंगे तो परिवर्तन हमारा स्लो रहता है, रुका हुआ रहता है। तो ब्राह्मीण जीवन में कौन कौन सी लीकेजेस हैं जो हमको एक अच्छा योगी नहीं बनने देती, हमें योग की गहराई में नहीं जाने देती। और बाबा कहते हैं कि अतींद्रिय सुख का जो अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। आत्मा के भटकने का मुख्य कारण ही यही है कि आत्मा को अतींद्रिय सुख का अनुभव नहीं हो पा रहा है। मन को एक ही चीज चाहिए, सुख, आनंद। मन को दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अगर वो आनंद उसे ईश्वरीय अनुभूति से मिल रही है, तो फिर मन शांत हो जाता है, फिर मन इधर उधर नहीं भटकता है। जब उसे परमात्मा याद से, ईश्वरीय मिलन से वो सुख नहीं मिलता है, तो हमारा मन फिर इधर उधर भटकता है, विकारों में जाएगा, वहां से सुख लेने की कोशिश करता है, साधनों की तरफ जाएगा, धन की तरफ जाएगा, लौकिक संबंधों की ओर जाएगा, घूमने फिरने में जाएगा, अलग अलग जगहों पर मन भागता है केवल एक ही चीज पाने के लिए, आनंद, सुख, और वो उसे मिलता नहीं है। वो मिलता है केवल बाबा की याद से। परंतु याद की गहराई में यदि हमें जाना है, तो ये जो छोटे छोटे लीकेजेस हैं, उनको बंद करना पड़ेगा। ये ठीक वैसी ही बात है कि हम सुबह से शाम तक 10 कदम आगे बढ़ के जाते हैं, या मान लीजिए कि दोपहर तक हम 10 कदम आगे बढ़ करके गए और शाम तक 8 कदम पीछे आ गए। टोटल हमने कितने कदम दूरी तय की? टोटल दूरी कितनी तय की? 18 कदम। 10 कदम गए, 8 कदम हमने मेहनत 18 कदम चलने की, लेकिन डिपॉजिट कितना कदम हुआ? सिर्फ 2 कदम। मेहनत तो हमने बरोबर की, लेकिन वो जो बैक आ गए ना, हम 8 कदम, एनर्जी तो हमारी उसमें उतनी ही लगी, लेकिन प्राप्ति हमारी माइनस हो गई। तो ये जो लीकेजेस हैं, हमें ना तो गहरे योग की अनुभूति करने देते हैं, ना एक अच्छा योगी बनने देते हैं, ना हमारा आत्म परिवर्तन को तीव्रता प्रदान करने देते हैं। इसलिए इनको जानना, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इनको हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इन पर हम काबू नहीं कर पाएंगे, इनको रोक नहीं पाएंगे। तो अभी एक एक करके हम सुनेंगे कि आपने क्या विचार सागर मंथन किया। कौन सुनाएगा पहले? आ जाए आप दोनों आ जाए, एक जने साइड में बैठ जाए सोफे पे, एक जने सुनाए। जिसको भी सुनाना है साइड के सोफे पे आके बैठ जाए, ताकि समय ना लगे। सारे टीम लीडर्स जो हैं साइड के सोफे पे आके बैठ जाए।
ओम शांति।
चलो
ओम शांति। जैसे कि टॉपिक है कि ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का लीकेज, तो पहले ये जानना पड़ेगा कि लीकेज है क्या, तो लीकेज की डेफिनेशन क्या है। तो जैसे कि हम सब ने आपस में बातचीत की तो वो निकला कि लीकेज क्या है। शक्तियों का लीकेज हो चाहे और चीजों का लीकेज हो, पर लेकिन हमारे ब्राह्मण जीवन में जो लीकेज है, जहां हमारी आत्मिक शक्ति क्षीण हो रही हो, वो है लीकेज। और ये कहां कहां होता है? ये होता है वेस्ट से सबसे ज्यादा। इम्प्योरिटी तो खैर बाद का नंबर आता है, पहले वेस्ट होता है, तो उसमें आत्मिक शक्ति क्षीण होती है।
कौन सा वेस्ट, इसको क्लियर करिए, कैसा वेस्ट?
वेस्ट जैसे भाई जी, वेस्ट जैसे कि हमारा ब्राह्मण जीवन में जो हमारी दिनचर्या है, उसमें हमें ज्ञान सुनना, समझना, देखना, और लेकिन अगर हम टीवी देख रहे हैं, जिस तरीके से कोई टीवी शो चल रहा है, जो इनपुट है, इनपुट हमारा अगर गलत है तो वैसी हमारी प्रोसेसिंग और वैसे ही हमारा आउटपुट। तो इनपुट जो जा रहा है वो टीवी से जा रहा है, मोबाइल से जा रहा है, तो फिर जैसे इनपुट अंदर जा रहा है वैसे से प्रोसेसिंग चल रही है, फिर वैसे ही हमारी क्या होगा, आउटपुट भी वैसे नजर आता है,
वैसा ही थॉट प्रोसेस होगा हमारा।
जी बिल्कुल
बिल्कुल, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अगर व्यर्थ और निगेटिव हम सुनते हैं तो मन में वही फिर विचार चलते हैं, उससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। बढ़िया। और
जैसे कि टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, और कभी मतलब लोगों की अपने भाई बहनों में कमी कमजोरियां देखना, और उससे सबसे ज्यादा मुझे जहां लगता है, मुझे लगता है कि ब्राह्मण जीवन में जो नियम मर्यादाएं बाबा ने बनाई हुई हैं, अगर वो उनमें कमियां आनी शुरू हो जाती है उन्हें फॉलो करने में, या हम उन्हें जैसे कि उनमें लूजनेस करते हैं, तब सबसे ज्यादा हमारी जो शक्तियों की ना लीकेज शुरू हो जाती है। क्योंकि नियम मर्यादाएं जो बाबा ने बना रखी है वो हमारे लिए बना रखी है, और जब हम उस पर ढंग से चल नहीं पाते या उनको थोड़ा सा लूज करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे ज्यादा शक्तियां हमारी क्षीण होना शुरू हो जाती हैं।
आप लोग ना, ये जो भी टीम लीडर सुना रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा खजाना है जो एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको लिखिए, आप लोग लीकेजेस के नाम से पॉइंट वाइज लिखते जाइए। जैसे ये बहन ने बहुत अच्छा कहा कि हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, फिर वही प्रोसेसिंग चलता है, मन उन्हीं चीजों को बार बार उगारता है, और उसमें हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, हमारी तपस्या का बल जाता है। दूसरा, ये बहन ने क्या पॉइंट अभी बोला,
नियम मर्यादाएं।
अब आप एक चीज ये क्लियर करें कि नियम मर्यादाएं जब हम फॉलो नहीं करते हैं, यज्ञ के जो नियम बने हैं, ट्रैफिक कंट्रोल है, अमृत वेले उठना है, मुरली रोज सुननी है, बाबा को याद करके सोना है, भोजन की शुद्धि, ब्रह्मचर्य की पालना, तो इससे हमारा आत्मबल कैसे नष्ट होता है
भाई जी? क्योंकि एक तो आत्मा पहले से ही कमजोर है, वो आई यहाँ पर आज शक्ति भरने के लिए है, और जो नियम है वो शक्ति भरने में काम दे रहे हैं। हमारा अमृत वेले शक्ति भरने के लिए बना है, मुरली है वो शक्ति भरने के लिए
भर रहा है, लेकिन अगर हम नहीं फॉलो करते
वो नहीं कर रहे,
वो रह जाता है।
तो
इसका एक बहुत सुंदर ये भी है कि यज्ञ के जो भी नियम मर्यादाएं बनी है, किसने बनाया?
बाबा ने।
भगवान के वो महावाक्य है, भगवान की वो श्रीमत है, और भगवान की श्रीमत को न मानना पाप है कि पुण्य है?
बहुत बड़ा पाप।
तो भगवान के यज्ञ में बने हुए नियमों का पालन न करना ये पाप है, और किसी भी तरह का पाप हमारे आत्मबल को नष्ट करता है। ये है इसका सार रूप में विश्लेषण। ठीक है, और बताएं।
और इसके परिणाम कि ब्राह्मण जीवन की जो नियम मर्यादाएं होती है वो हमें भारी लगने लग जाती हैं, फिर वो बड़ी लगने लग जाती हैं कि वो फॉलो नहीं होती। फिर जैसे अमृत वेला करना तो भारी लगने लग जाएगा, क्योंकि शक्ति जो है वो घट रही है। जब हमारे अंदर कितने हम बीमार होते हैं, पर लेकिन जब हमारे उमंग उत्साह होता है तो हम वो काम कर देते हैं जो हमारे बस की भी नहीं होता, पर लेकिन जब आत्मिक बल कम हो रहा है तो ये जो बाबा की जो हमें इतनी प्यारी प्यारी चीजें लगती है, मुरली सुनना, योग लगाना, वो भी भारी लगने लग जाएगा। तो यानी ब्राह्मण जीवन की जो नियम मर्यादा है वो ही भारी लगने लग जाती है। खुशी गायब हो जाती है, तन की शक्ति घटती है, मन की शक्ति घटती है, धन की भी शक्ति घटती है, संकल्प शक्ति घटती है, ये सब घटती है। जब अगर आत्मिक शक्ति घटती है तो ये साथ में ही लेकर मतलब डाउन होना शुरू हो जाती है।
ठीक है, थैंक यू,
ओम शांति।
नेक्स्ट, थोड़ा सा टीम लीडर्स ये ध्यान रखे, बी स्पेसिफिक, आप वही बातें सुनाएं जो टॉपिक है, कौन कौन सी बातें हमारे आत्मबल को नष्ट करती हैं, वो लिखीजिए कौन कौन सी है। हाँ, उससे नुकसान तो बहुत सारा है, खुशी गुम हो जाएगी, शक्ति, वो बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो बातें बताएं क्योंकि समय कम है।
ओम शांति। जो हमारा लीकेज है व्यर्थ हो चुका, तो बीती का चिंतन हमारा बहुत बड़ा लीकेज है।
गुड, वेरी गुड।
क्योंकि जितना हमारा बीती का चिंतन चलेगा उतना ही हम पास्ट में रहेंगे, और बाबा कहते हैं पास्ट को बिंदी लगाओ, और हमने बाबा की श्रीमत नहीं मानी उसका भी बोझ, और जो हमने बीती को सोचा उससे बाबा के ज्ञान का तो हमने विचार सागर मंथन किया ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी लीकेज हो जाती है। और इसको हम दूर कर सकते हैं ड्रामा की स्मृति में रहकर, कि जो हो चुका ड्रामा उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इस स्मृति से हम बीती के चिंतन से बच सकते हैं। सेकंड है बहानेबाजी और अलबेलापन, इससे भी हमारी लीकेज होती है, और इसको हम दूर कर सकते हैं अपनी दृढ़ता से, अपने कर्तव्य की स्मृति से, प्लस समय कौन सा चल रहा है इसकी स्मृति से हम इनको दूर कर सकते हैं। फिर जब हम प्रदर्शन करते हैं, परमत पर चलते हैं, और प्रदर्शन परमत पर चिंतन, तो इससे भी हमारी लीकेज होती है, इसको हम दूर कर सकते हैं स्वदर्शन चक्र चलाकर। फिर बाहरी दुनिया का आकर्षण, जो कल हमने निर्मला दीदी की भी क्लास में सुना, और बाहरी दुनिया का आकर्षण, हम मुरली सुनना एक क्लास में, उसके बाद फिर हम शॉपिंग करने चले गए, कुछ कुछ प्लानिंग में लग गए अपने घर को ही डेकोरेट करने की, तो फिर क्या होगा? बाबा का ज्ञान तो सिर्फ एक घंटा, और 23 घंटे हमने सोने में, खाने पीने में और घर को सजाने संवारने में लगा दिए, तो वो सारी लीकेज है, फिर वो बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं ज्ञान। फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा मुरली सुनने का भी नहीं मन करेगा। वही बात तो है, रोज आत्मा का ज्ञान बाबा देते हैं, वही कहते हैं मुझे याद करो, वही कहते हैं दूसरों को दुख मत दो, सारी बातें वही तो हैं, मजा ही नहीं आएगा फिर जाने में। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहें, अंतर्मुखता को अपनाएं, अपने मन का प्रोग्राम बनाएं। बाबा कहते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं वो अपना शेड्यूल बना के रखते हैं कि आज मुझे हर घंटे में क्या क्या करना है, तो हम भी अपना रूटीन बनाएं कि एक घंटा मैं स्वदर्शन चक्कर ही चलाऊंगा, एक घंटा मैं पवित्रता के स्वमान की प्रैक्टिस करूंगा, एक घंटा मान लो जैसे हम 1 से 12 की घड़ी ले लेते हैं, एक नंबर पे पहुंच जाओ परमधाम, मैं परमधाम निवासी हूं, एक बाप का बच्चा हूं, सेकंड नंबर में सर जैसे हम परम सूक्ष्म वतन में आ गए, वहां मेरे मम्मा बाबा हैं, तो इस तरह से हम अपने मन का अगर अमृत वेला के बाद प्रोग्राम सेट कर लेते हैं तो हम इस लीकेज से बच जाएंगे और हमारा पुरुषार्थ जो है बहुत उन्नति को पाएगा सर। फिर हम कच्चा फल खा लेते हैं। कच्चा फल खाना माना क्या कि माने मैंने कोई सेवा की और स्वार्थवश मुझे चाहिए कि मेरा नाम हो, कम से कम स्टेज पे दीदी ये तो बोल दे कि आज इस बहन ने ये काम किया है, तो उससे क्या होगा, मैंने अपने सेवा के बल को जमा नहीं किया और ये भी एक लीकेज हो जाएगी। और मीडिया का टू मच यूज, चाहे वो हम यूट्यूब पे, हम बहनों को तो रहता है रेसिपी देख के फिर वो किचन में बनाए और खाए, तो इससे हमारी बुद्धि टू मच खाने में और बनाने में चली जाती है, फिर बाबा छूट जाते हैं और हम विचार सागर मंथन भी नहीं कर पाते, जो योग में टाइम देना चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते मैं भाषणा लेता हूँ खाता नहीं हूँ।
तो और कुछ है, और कुछ?
थैंक यू।
ओके, नेक्स्ट थोड़ा जल्दी जल्दी सुनाए। अच्छा है ना, इसमें भी कितनी सारी बातें निकली ना, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका प्रयोग कम से कम करें, इनमें भी हमारी शक्ति बहुत वेस्ट होती है, हमारी जो मान सम्मान की इच्छा है, प्रशंसा की, वो सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी बातें, ये सब आप नोट करते जाएं, बताएं।
ओम शांति। सबसे पहले हम दिन की शुरुआत अमृत वेले से
नजदीक ले लें
जी। सबसे पहले दिन की शुरुआत अमृत वेले से होती है, तो कई बार हम अमृत वेला मिस करते हैं, ये बहुत बड़ी लीकेज है। दूसरा, हम मुरली नहीं सुनते हैं, और मुरली सुन भी लेते हैं तो मुरली पर हमारा विचार मंथन नहीं होता है, तो वो बहुत देर तक हमारे अंदर वो मुरली रहती नहीं है। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम भोजन पकाते हैं तो हम ईश्वर की याद में भोजन नहीं पकाते हैं। चौथा, जब हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन या तो तामसिक होता है या राजसिक होता है, हमारा भोजन बिल्कुल सिंपल होना चाहिए ताकि हमारा मन उसके स्वाद में नहीं भटके और हम ईश्वर के साथ उस स्थिति में ज्यादा देर तक स्थित रह पाए। चौथा और बहुत इम्पोर्टेंट है, परचिंतन और व्यर्थ चिंतन। जैसे कि आज मीडिया बहुत पॉपुलर है, हम सारी चीजों को मीडिया से कनेक्ट कर ही देखते हैं, और साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि जब हम चीजों को देखते हैं वो हमारे अंदर ज्यादा उतरती हैं बजाय इसके कि जो हम सुनते हैं। तो इसीलिए हमें वही देखना चाहिए जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, यानी कि बाबा की मुरली सुनना, उसको आप विचार मंथन करना, और अगर देखना भी है तो बाबा के स्वमान की जो तस्वीरें हैं उनको देखिए ताकि वो आपके जीवन में उतरे। पांचवा पॉइंट, मोह बंधन। जैसे ही हमें हमारे बच्चे का विचार आता है, सारे बंधन तो हमारे संबंधों से जुड़ा है, बस फर्क इतना है कि हमारा संबंध ईश्वर से ज्यादा गहरा है या हम जो इस दुनिया में अपना रोल निभाने आए हैं उस लौकिक संबंध से ज्यादा है, है ना। जैसे ही कोई परिस्थिति आती है तो हमारा ध्यान, हमारा विचार संबंधों की ओर चला जाता है, इससे हमारी आत्मा की शक्ति और ज्यादा क्षीण हो जाती है और हमारा फोकस, लाइन ऑफ फोकस जैसे ही हटता है तो हमारा विचार भी बदल जाता है और फिर हमारा आचरण भी बदल जाता है। छठा, पवित्रता जीवन में बहुत जरूरी है। पवित्रता आपके मन, वचन, कर्म और आचरण, ये चारों में ही होनी चाहिए, और जब ये चारों चीजों में आपकी पवित्रता होगी तो कभी भी आप पर चिंतन और व्यर्थ का चिंतन नहीं करेंगे। कैसी भी परिस्थिति होगी वहां पर आप सामने वाले के लिए आपके मुंह से दुआएं ही निकलेंगी, पवित्र बोल ही निकलेंगे। और मीडिया तो मैंने डिस्कस कर लिया। देह भान में रहना, आत्मिक स्थिति में हम स्थित नहीं हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा, मैंने अच्छी तरीके से ड्रेसअप तो किया है, मैं अच्छी तो दिख रही हूँ, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, हमारा ध्यान इसमें ज्यादा रहता है बजाय इसके कि इतने युगों से जो मेरी आत्मा के वो सात गुण थे वो कहीं खो गए हैं, हमको उनको वापस, हमको अपनी बैटरी को चार्ज करना है। तो देह भान से हमें बाहर निकल के आत्मिक स्थिति में खुद को स्थित करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। चौथा है, न दुख हमें लेना है न दुख किसी को देना है। अगर हमको बस इस ड्रामा को समझना है, अगर किसी से हमें दुख मिलता भी है तो हमें उसको लेना नहीं है बल्कि हमको उसको दुआएं देनी है। तीसरा, तीन बिंदु यानी पास्ट में जो बीत चुका उसको बिंदी लगाओ, मैं आत्मा हूं इस बिंदी को याद रखो, और उस ज्योतिर्बिंदु परमात्मा से अपना योग लगा के रखो, तो आपकी कभी भी मनस्थिति यहाँ पे नहीं बिगड़ेगी। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम पूरे दिन क्या महसूस करते हैं, हम वही महसूस करेंगे जो हम इन दो आंखों से देखेंगे, जो हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से होगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमें ईश्वर का ध्यान देना चाहिए, ईश्वर की स्तुति में रहना चाहिए, उससे हमारी फीलिंग्स भी अच्छी बनी रहेंगी। धन्यवाद।
थैंक यू। नेक्स्ट, आप लोग थोड़ा सा और स्पेसिफिक होके सुनाएं, क्या करना है वो सुनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लीकेजेस का वर्णन करें।
ओम शांति। बाकी तो सबने मोबाइल वगैरह ये तो बता ही दिया, पर जो टॉपिक छूटे हैं मैं वही डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला, ब्राह्मणों में ईर्ष्या। अगर कोई और आगे बढ़ रहा है ब्राह्मण, तो उसको देखकर हमें ईर्ष्या आना वो भी बहुत बड़ा लीकेज है। कि कोई और आगे, बाबा कहते सबको आगे बढ़ाओ, लेकिन हम कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देखकर अंदर ही अंदर जब चिढ़ मचने लगती है कि तो इतने से समय से ज्ञान में और ये मेरे से आगे कैसे जा सकता है, तो ईर्ष्या बहुत लीकेज है। फिर है कि आपस में संस्कारों की जब टक्कर होती है, तो मुझे इसी के साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना, या फिर यहाँ भी आएंगे तो मुझे रूम में यही साथी चाहिए, या फिर ब्राह्मणों में इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाना कि उसके बिना रह ही नहीं सकते, तो फिर बाबा साइड में हो जाते हैं। फिर है कि समय को हम महत्व नहीं देते, कि संगम युग चल रहा है और एंड का भी एंड चल रहा है, और हम उसमें भी टू मच रिलेटिव्स के अंदर इतना ज्यादा उलझे हुए हैं, तो फिर वो भी हमारा एक लीकेज होता है। फिर स्वमान में नहीं रहना। बाबा ने इतने सुंदर सुंदर टाइटल दिए हैं कि अपने को मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, सत्योगी आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ये जब बातें हम भूल जाते हैं और हम अपने आप को खुद ही गिराते रहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं नहीं कर सकती, ये तो इतने साल वाले हैं इनको करना है, या फिर इतने साल वाले अभी नहीं सुधरे तो मैं कैसे सुधर सकती हूँ। मतलब खुद को खुद ही हम आगे बढ़ाने के बजाय और उसको पीछे करते रहते हैं। फिर है दैहिक दृष्टि। जितना ज्यादा हमारी दृष्टि दैहिक होगी उतना आत्मा की पावर नष्ट होगी, क्योंकि बाबा बोलते हैं आत्मिक दृष्टि से आपकी पावर बढ़ती है, तो फिर दैहिक दृष्टि से आत्मा की पावर घटती भी तो है। वो द्वापर युग से यही तो सब हुआ कि जैसे हम देह भान में आए और हमारी पावर घटती गई। फिर है ड्रामा के राज को हम भूल जाते हैं, कि बाबा ने कहा हर एक का अपना अपना रोल है, सबका रोल चल रहा है और ड्रामा रिपीट हो रहा है। अगर यही हम समझेंगे तो कहते बाबा बोलते बनी बनाई बन रही है, कुछ नई तो बन नहीं रही, तो जो बन रहा है उसको हम साक्षी होकर देखते हैं तो हम व्यर्थ से बच जाते हैं। नहीं तो क्यों, क्या, कैसे, ये पांच जो दादी जी भी बताते हैं माया के दरवाजे, कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, अगर इनमें हम उलझ गए तो एक काऊ काऊ की भाषा क्या करेगी हमको, बहुत ज्यादा व्यर्थ में ले जाएगी। और फिर लास्ट में हमको लगाना तो बिंदी ही पड़ता है, जब सब कुछ हो जाता है फिर हम कहते छोड़ो ना, इतना किया क्या फायदा, छोड़ो इसको। लेकिन अगर शुरू में हमको ड्रामा का स्मृति आ जाए तो हम वेस्ट से बच जाएंगे। फिर है श्रीमत का हम उल्लंघन कर देते हैं, कि बाबा की श्रीमत ये है, अगर श्रीमत पर चलते हैं, जैसे अभी बाबा ने 24 नवंबर को बोला कि अब सारे दिन में अपनी मनसा सेवा का टाइम फिक्स करो, किया आप में से किसी किसी ने? अगर हम बाबा की श्रीमत को तुरंत फॉलो करते हैं तो बाबा हमें वो वरदान दे देते हैं, और फिर हम कहने के साथ ही, जैसे लौकिक में भी कोई बच्चा कहते ही काम करता है तो उसको दुआ मिलती है, तो जो बाबा ने अभी एक महीने का होमवर्क भी हमको दिया कि ब्रह्मा बाप समान स्थिति बनानी है, तो वो अगर हमको नॉलेज बुद्धि में रहेगा कि बाबा ने क्या बोला, अगर सुना इधर से और निकाल दिया तो हम संपन्न नहीं बन पाएंगे और लीक होता रहेगा। हाँ, तो श्रीमत का फॉलो करना है और अपनी चेकिंग करनी है खुद को, खुद ही, दूसरा नहीं हमें चेक करेगा हमारे अंदर क्या कमी है, ये खुद को चेक करना है। ये चेक करेंगे तो हमारी पावर हम खुद बढ़ा सकते हैं। बाकी तो फिर सबने बता दिया। अमशा,
और कोई रह गया इसके बाद?
थैंक यू दीदी, अच्छा से आपने स्पष्ट किया है। एक दो पॉइंट्स बताना चाहते हैं। एक तो हमने डिस्कस करके हमने निकाला कि क्रोध मोटे पे है लेकिन इरिटेशन होता है, किसी का कॉल आया नहीं, किसी को कॉल करके कॉल नहीं लग रहा है, तो छोटा छोटा इरिटेशन होता है हमारा, डेली लाइफ में तो इरिटेशन बहुत ये खाते रहते हैं, लीकेजेस का एक कारण बनते हैं। फिर व्यर्थ संकल्प, हर सब लोग क्या व्यर्थ संकल्प एक बहुत बड़ा कारण है। बस व्यर्थ संकल्प का रीजन जो बीती हुई बातों जो दीदी ने बताया ऑलरेडी बीती हुई बात, लेकिन आगे जो आगे का बात का भी चिंतन नहीं करना है हमें, ये भी व्यर्थ संकल्प। बाबा को ऊपर छोड़ना है, नीचे बुद्धि का कमी वहां पे है, इसलिए हमें बाबा को ऊपर छोड़ना है, आगे का बात भी चिंतन कम करना है। फिर सब लोग बताया कलियुग की दुनिया से लगाव होते हैं हमारा, मार्केट में गए अच्छा अच्छा कुछ बना रहे, उसका साथ थोड़ा संकल्प चले तो भी एक लीकेज है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा लिखे जाते हैं, हमें उसका टाइमिंग देखना है। कोई भी वस्तु, बाबा कहते हैं वस्तु व्यक्ति वैभव, कोई व्यक्ति का हमारा चिंतन नहीं करना है। कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो या ज्ञान अच्छा सुनाते हो, उसी वे में भी हमारा संकल्प नहीं चलाना है। वस्तु का मोबाइल, अच्छा मोबाइल, अभी मेरा साथी का मोबाइल का 80,000 का मोबाइल है, तो हम अभी सोचे तो उसका एक मेरे अंदर कोई लगाव नहीं आना है, तो ये इम्पोर्टेंट है लीकेज का। एक है ये सब लोग हम बताया भी है, कवर किया भी होगा, लेकिन ईगो, ईगो में आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक इम्पोर्टेंट बात है। बिकॉज कभी होता है ना देह का आइडेंटिटी से हम बात करते हैं, मैं फलाना हूं, कास्ट लगा कर भी बात करते हैं, ये लीकेज के कारण होता है। सूक्ष्म रीति में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मनी भी है, ज्ञान, अगर ज्ञान का अहंकार है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी नहीं है ना, ज्ञान का अहंकार भी लीक के जा जाते हैं। मेरा मन, मेरा बाबा कहते ही है हमेशा, एजुकेशन, ज्यादा एजुकेशन हो गया तो ये भी एक लीकेज का कारण हो गया। आप ब्राह्मण में आके, ब्राह्मण परिवार में आके ऐसा भी सोचना नहीं है, कोई भी कंपेरिजन और कॉम्पिटिशन नहीं करना है। और एक और बात है, एनवायरमेंट भी एक लीकेज का कारण बनते हैं। ये हमारा साथी में डिस्कस कर रहे थे, पॉइंट सारा इसी से निकला है, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ का आके एक अलग है, लेकिन बाहर जाओगे तो वो एनवायरमेंट हमें प्रभावित करते हैं, वो भी एक लीकेज का बहुत बड़ा कारण होता है। तो संगत, वो भी भाई जय ने ये शब्द यूज किया था, संगत से बचते रहना है। वी हैव टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम द एनवायरमेंट एज वेल एज आवर फ्रेंड्स। ज्ञान की धारणा की कमी बताया था। फिर एक इम्पोर्टेंट बात हमारा एक भाई जी ने बताया था कि ओवर रिएक्ट नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन और कोई भी बात हमारा सामने आए ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ओवर रिएक्शन इज रिएक्शन इटसेल्फ इज लीकेज, रिएक्शन ही लीकेज है, ओवर रिएक्शन तो ज्यादा लीकेज है, ये भी हमें ध्यान देना है, साइलेंट रहना है। तो फिर बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा एक वैविक अविक पुल में कहा कि देह का प्रवृत्ति का गृहस्थी नहीं बनना, बिकॉज हम ज्यादा कर्म कॉन्शियसनेस बन जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना है, पैसा तो कमाना है ना, क्या करना है। तो ये ब्राह्मण जीवन में आके ये कर्म कॉन्शियसनेस ज्यादा नहीं बनना है। फिर हमारा भाई जी ने हमारे भी ये पॉइंट निकला है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना कि यहाँ का यहाँ आ रहे, कोई बताए क्यों जा रहा है, ऐसा जीवन क्यों जीना, नहीं सुनी सुनाई का बात में हमें विश्वास नहीं करना है। सुनी अनसुनी करने के लिए बाबा हमें सिखाते ही है, ये भी हमें फॉलो करना है। ऑलरेडी डिस्कस किया कि श्रीमत पर मन मत मिक्स नहीं करना है, ऑलरेडी दीदी ने भी बताया, और बाकी सब पॉइंट कवर हो गए। ओम शांति,
थैंक यू। तो ये चिंतन फ्रूटफुल रहा, कुछ दिमाग चला आप लोगों का, अब इसको दिमाग को शांत नहीं होने देना है। आप लोग जाइए, यहां से उठेंगे योग के बाद, भोजन करेंगे, कमरे में अपने अपने बिस्तर पे बैठकर इसको आगे थोड़ा लिखना, और कैसे लिखना है थोड़ा सा स्पेसिफिक होइए, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कम शब्दों में हम अपनी बात को कितना क्लियर कर पा रहे हैं ये एक अच्छे वक्ता की निशानी है। उसके लिए थोड़ा स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों ने चिंतन किया लेकिन आपका चिंतन अभी भी काफी क्रूड है, उसको रिफाइन करने की जरूरत है। प्रश्न क्या था, लीकेजेस इन ब्राह्मण लाइफ, कहां कहां हमारी शक्तियां, मेरी ऊर्जा कहां कहां नष्ट हो रही है। खुद को देखें, मैं अपनी दूसरों को देखने की जरूरत थी, मेरी शक्ति कहाँ कहाँ व्यर्थ जा रही है, कहाँ कहाँ व्यय हो रही है। तो कुछ लोगों ने इसको हम अमृत वेला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, ठीक है अमृत वेला नहीं किया तो मिलेगा नहीं, मुरली नहीं सुनेगा मिलेगा नहीं, प्रश्न वो नहीं है कि क्या नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं, जो मिला आपने योग किया, सेवाएं खूब की, अमृत वेला भी किया, मुरली भी सुना, एक तरफ से आप संचित कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि वो संचित ऊर्जा को नष्ट कहां कर रहे हैं। अब जैसे भाई ने एक दो बातें कहा, ओवर रिएक्ट करना, ठीक है ये सब चीजें भी हैं, लेकिन ये सब चीजें बार बार हर रोज नहीं होती। अब जैसे ओवर रिएक्ट वाला सारा दिन ओवर रिएक्ट नहीं करेगा, या और भी इरिटेशन है, ये चीजें हैं, यहां भी हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं, बहुत कम होती हैं, लेकिन मेजर वो कारण कौन कौन से है, जैसे बीती बातों के चिंतन में रहना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंसान, मनोविज्ञान ऐसा मानता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि मनुष्य अपनी सारी दिन की दिनचर्या में करीब 80% समय अपना पास्ट की बातों में बिताता है। सो वी आर वेस्टिंग मोर देन 80% ऑफ आवर टोटल एनर्जी एंड टाइम बीती बातों में। ऐसे ही 15% हम फ्यूचर की बातों में बिताते हैं। तो ऐसी बातें, कुछ प्रैक्टिकल मोटी मोटी बातें आप निकालें, और बहुत ही सिंपल ग्रॉस लेवल पे, जहां पर हमारी ऊर्जा ज्यादा मात्रा में नष्ट हो रही है। आपने जो कुछ कहा कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन हमारी जो एनर्जी है वो एक मास स्केल पे कहां कहां नष्ट हो रही है, पर चिंतन में, पर दर्शन में, बीती बातों के चिंतन में, श्रीमद की अवज्ञा करने में, कहीं से भी कोई अगर पाप कर्म हुआ, आत्मा इंस्टेंट खाली हो जाती है। तो ये ऐसी चीजों पर हम सब चिंतन करेंगे। तो आप सब अब इसको लिखेंगे, जैसे ही आप अपने कमरे में जाएंगे डायरी पेन लीजिए, लिखना बहुत जरूरी है, लिखने से हमारा ज्ञान बहुत ज्यादा क्रमबद्ध होता है। तो एक घंटा इसको आप लोग जरूर दीजिए, लिखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी, ठीक है। अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं, फिर पूरा करेंगे।